Ya Allah. بسم الله الرحمن الرحيم آداب المعاشرة تھوڑا سا آپ لوگ بھی سیٹنگ بناؤ اپنی کوئی چھپے گا نہیں مہمان کے آداب ادب اگر کسی کے ہاں جاؤ اور تم کو کھانا منظور نہ ہو خواہ اس وجہ سے کہ کھا چکے ہو یا روزے سے ہو یا کسی اور وجہ سے کھانے کا ارادہ نہ ہو تو فوراً جاتے ہی اس کی اطلاع کر دو کہ میں اس وقت کھانا نہیں کھاؤں گا. یہ مہمان کے لیے ادب ہے. سبحان اللہ. یعنی اس کے مطلب پر غور کریں تو کیا یعنی سبحان اللہ. اگر کسی کے جاؤ اور تم کو کھانا نہ کھانا ہو خواہ اس وجہ سے کہ کھا چکے ہو بھوک نہیں ہے یعنی یا روزے سے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے کہ نہیں کھانا تو فوراً جاتے اس کی اطلاع کر دے کہ میں اس وقت کھانا نہیں کھاؤں. ایسا نہ ہو کہ وہ انتظام کرے اور انتظام میں اس کو دقت اور پریشانی ہو پھر عین کھانے کے وقت یہ اطلاع کرو کہ جی میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو بیچارے کی محنت سب برباد کی. سبحان اللہ. اس سے اس کو بڑا دکھ ہوگا اور تکلیف ہوگی. اس لیے اس ادب کا لحاظ بہت ضروری ہے. ادب. اسی طرح مہمان کو چاہیے کہ جہاں جائے میزبان کو اطلاع کر دے کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں اور کھانا کھا کے آؤں گا. اب کسی کا ٹھہرا ہوا ہے ارے میں سامنے بیٹھو کہ چھپ کے کیوں بیٹھتے ہو. اب کسی کا ٹھہرا ہوا ہے اب وہ سوچے گا کہ بھائی وہ گیا ہے وہ آئے گا آ کر کھانا کھائے گا. ابھی آئے میزبان نے کھانا سامنے رکھا کھانا تو میں نے کھا لی بھائی وہی پریشانی ہے نا. تو یہی سمجھا رہے ہیں کہ اطلاع کر کے جاؤ اور کہہ دو کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اور اس میں ایک ادب یہ بھی کہ بتا کر جائے کہ کھانے کا وقت آئے گا وہ میزبان تلاش کرے گا مہمان کو مہمان غائب ہے. یہ بھی ایک پریشانی ہے. سبحان اللہ. ادب. اسی طرح مہمان کو چاہیے کہ کسی کی دعوت بغیر میزبان سے اجازت حاصل کیے ہوئے قبول نہ کرے. یعنی جس کے یہاں ٹھہرا ہے وہ میزبان ہے میزبان کا حق ہے اس کی اجازت کے بغیر قبول نہ کرے. ادب. کہیں مہمان ہو تو وہاں کے انتظامات میں منتظم ہونے کی حیثیت سے ہرگز دخل نہ دے کہ وہ خود سارا انتظام سنبھالنا شروع کر دیا یہ تم نے یہ کیوں کیا فلاں یہ کیوں کیا ایسے نہیں ایسے کرو ایسا نہ کرے. لہذا اس میں لکھا منتظم لہذا خادم کی حیثیت سے ہو جائے کہ کام کر رہے ہیں ساتھ خود بھی شامل ہو گیا. سبحان اللہ. خصوصاً खानकाहों में जहां लोग अपनी इस्लाह के लिए आते हैं तो वहां मेहमान बनकर ना बैठे, टांगे पसार के बैठे हैं, ओए खाना ला, ओए प्लेट ला, ओए पानी पिलाओ मुझे। ये इस्लाह वालों के लिए तो बहुत ही मुजर है ये चीज। ऐसा शख्स तो इस काबिल है कि इसको फौरन खानका से इखराज किया जाए, इसमें नहीं लिखा हुआ। अलबत्ता अगर मेजबान कोई खास इंतजाम उसके सुपुर्द कर दे कि भाई आप कोई ऐसे से, तो इसमें कोई मुजायका नहीं, यानी गोया खादिम बन कर रहे हैं। एक तालिब इल्म मेहमान आए जो पहले भी आए थे और दूसरी जगह ठहरे थे, और अब की बार यहां ठहरने के इरादे से आए, मगर बताया नहीं, जाहिर नहीं क्या कि भाई तुम्हारे पास रहूंगा, इसलिए खाना नहीं भेजा। हजरत का तो पूरा असूल था, मेहमान जितने होते थे हर एक को खाना भिजवा देते। बाद में पूछने से मालूम हुआ कि खाना मंगाया गया, एक हजरत ने खाना भी खिलाया और उनकी फहमाइश की, डांट डपट की, इस्लाह की के ठहरने की हालत में आज खुद बता देना चाहिए कि मैं ठहरूंगा। इंसान पुरानी बात याद रहती है, जदीद बात हो उसकी इतला करे कि जी मैं ठहरूंगा। फरमाया कि बगैर कहे कैसे मालूम होगा। बात याद आई कि हजरत हकीम उल उम्मत थानवी का अपना वाकया है, फरमाते हैं कि मैं कानपुर से गंज मुरादाबाद गया शहजाद मौलाना शाह फजल रहमान साहब गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह खिदमत में। जब पहुंचा तो सफर में कुछ ताखीर हो गई, तो रात इशा के बाद पहुंचा। अब जो हजरत शाह फजल रहमान साहब ने देखा, इतना डांटा, ये कोई वक्त है आने का हजरत हकीम उल उम्मत को, और वो हजरत की जवानी का जमाना था, तो मैं ये कोई वक्त आने का, मुंह उठाए चले आ रहे। तो फिर फरमाया खाना खाया नहीं खाया, अब कहां से इंतजाम करें तुम्हारे लिए, जाओ खुद खाओ खाना, डांट लगाई। हकीम उल उम्मत फरमाते मेरे जहन में भी था कि भाई ये तो बेवक्त है, खाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं खुद खाऊंगा। हजरत ने खैर पूछा तो अर्ज किया, खैर उसके बाद गए उठकर, एक तरफ तो ये डांट लगाई, हकीम उल फरमाते मैंने कुछ नहीं कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल में भी कुछ नहीं था और मैंने गलती का इकरार किया। और बहरहाल हट फरमाते मैं कमरे में आकर ठहरा, इधर हजरत ने अपनी साहबजादी साहिबा के घर में भेजा किसी को कि जाओ मालूम करो घर में कुछ है, तो पता है कि जी कुछ खाना बचा हुआ था, कहा मंगवा लिया। इतला हजरत ने कहलवाया कि खाना ना खा, यानी मेहमान को काम की बात में लगना चाहिए, फजूल बात में न लगे, खुसूसन खानकाहों में रहने वाले हैं के इस पर जिक्र किया। एक मेहमान ने दूसरे मेहमान से कहा था कि खाना तैयार है, एक मेहमान ने दूसरे मेहमान से कहा था कि खाना तैयार है, तो उस पर फरमाया जब उसको कोई हक नहीं था तो नहा के क्यों कहा। अदब, एक मेहमान ने मेजबान के खादिम से पानी ये कहकर मांगा इस अंदाज से पानी लाओ, हुकुम वाला अंदाज, तहकुमाना। इस पर फरमाया कि तहकुम का लहजा हरगिज ना चाहिए, यह बद अखलाकी है, यूं कहना चाहिए कि पानी दे दीजिएगा या पानी ले आइए, पानी पिला दीजिए, यानी हुक्म ना दे। मेहमान को चाहिए जब जाए मेजबान क्या तो हुक्म ना चलाए, हुक्म ना चलाए। सुभान अल्लाह। अदब, मेहमान को चाहिए कि अगर परहेजी खाना खाता है या मिर्च कम खाने का आदी है तो पहुंचते ही मेजबान को इतला कर दे। बाज़े लोग जब खाना दस्तरखान पर आ जाता है फिर नखरे दिखाते हैं, ये हजरत ने लिखा है, तो उस वक्त नखरे फैलाते हैं, हजरत का जुमला ये है, उस वक्त नखरे फैलाते हैं कि जी हम तो मिर्च नहीं खाते, जी हम तो ये नहीं खाते, हम तो फलां चीज नहीं खाते, तो जो है पहले ही इतला करते हैं। एक का वाकया लिखा कि एक शख्स का वाकया कि ईशा के बाद कहने लगे कि मैं एक जगह से रजाई ओढ़ने के लिए ले आऊं कहीं जाकर, तो फरमाया कि भाई इस वक्त मदरसे का दरवाजा बंद हो जाता है, आप जाएंगे, आप जाएंगे फिर जब वापस आएंगे तो शोर मचाओगे कि दरवाजा खोलो, सबको भी आराम करोगे। उस पर फरमाया कि अगर ये काम करना था तो पहले ही कर लेते, ये ऐन उस वक्त में क्या सूझी। सुभान अल्लाह। और उसी तरीके से कहीं ठहरना नहीं है, गए ठहरना नहीं है, पहले ही इत्तला करते नहीं ठहरना। अब सब बिस्तर बिस्तर सब उसने अपना खाना बिस्तर बिस्तर का एहतमाम किया, आखिर में मुंह खोल रहे हैं कि जी मुझे तो जाना है। तो ये सब बातें अदब की बातें हैं। सुभान अल्लाह, अजीब अदब। किसी के घर मेहमान जाए तो उससे किसी चीज की फरमाइश ना करें। फरमाते हैं बाज दफा चीज तो होती छोटी सी है, बेहकीकत और छोटी सी चीज होती है, लेकिन बाज मरतबा ऐसे हालात आते हैं कि मेहमान उसको पूरा, मेजबान उसको पूरा नहीं कर सकता, उस वक्त बड़ी शर्मिंदगी होती है। जैसे एक मिसाल है, अब रात का वक्त है, चाय पिला दे मुझे। अब चाय क्या है, कुछ भी नहीं, छोटी सी चीज है, लेकिन अब मैं दूध नहीं है घर पे, क्योंकि निजाम ऐसा है, निजाम ऐसा है कि जी होता है घरों में बाज मरता जल्दी खत्म हो जाता है, कभी ये बाज मरता होता है कि निजाम होता है कि नहीं रखते, सुबह ताजा लाते हैं। अब है छोटी सी चीज ना, लेकिन अब उस वक्त मेजबान को परेशानी होगी कि नहीं होगी, तो इसलिए फरमाया कि फरमाइश ना करें। हाँ, जहां बेतकल्लुफी हो वहां और बात है, और उस बेतकल्लुफी के माने यह है कि इसने बेतकल्लुफी से कहा, उसने बेतकल्लुफी से मना कर दिया, ये है बेतकल्लुफी। उसने चाय पिला दो, तेरे बाप का इस वक्त कहां से दूध लेकर आएंगे, चल आराम से सो जा। सुभान, ऐसी बेतकल्लुफी हो, यानी लहजा तो आपस में होता ना, बहरहाल समझाना ये है कि यानी मेजबान भी ऐसी बेतकल्लुफी हो, बेतकल्लुफी से मना कर सकते हैं कि भाई नहीं, इस वक्त हम कहीं इंतजाम नहीं कर सकते, तो ऐसा वहां कोई कहने में, या मेजबान खुद पूछे, मेजबान खुद पूछे कि भाई कोई आपकी तबीयत है तो आप बता दें, कोई है तो कहे कि, तो भी इस तरह कहे कि अगर अगर आपको इंतजाम हो सके तो चाय पिला दें। तो इसी तरह यानी गोया एक बात है, इसमें कई चीजें होती हैं। सुभान अल्लाह, अजीब। मेहमान को चाहिए कि अगर पेट भर जाए तो थोड़ा सालन रोटी जरूर छोड़ दे, ताकि घर वालों को ये शुबा ना हो कि मेहमान को खाना कम हो गया, इससे वो शर्मिंदा होते हैं। अल्लाह क्या, यानी आप इसकी गहराई में गौर करें तो कितनी अजीब बात है कि पेट भर जाए, नहीं पेट भर गया तो थोड़ा सा छोड़ दे, गोया के अलामत बता दे कि हाँ भाई, क्यों, ताकि मेजबान को शर्मिंदा, क्योंकि यार इसका पता नहीं पूरा खत्म हो गया, पेट भरा कि नहीं भरा। सुभान अल्लाह। अजीब अदब। जो शख्स खाने के लिए जा रहा हो, किसी की दावत है या बुलाया गया हो, उसके साथ वहां तक मत जाओ, यानी कहीं दूर से उसको रुखसत कर दो, गोया मेजबान को पता ना चले। क्यों? क्योंकि जब वो भी साथ आएगा तो अब साहिब खाना जो मेजबान होगा शर्मा शर्मी में, वो भी कहेगा आइए जनाब आइए। अब हो सकता है खाने का इंतजाम ना हो। सुभान अल्लाह। अब वो शर्मा शर्मी में कहेगा तो दो बातें होंगी, कि अब खाना है नहीं, अब दिल से अंदर चाहता तो नहीं है। अब उसने रस्मी तौर पर कहा कि जनाब आइए, शर्मा शर्मी में ना। अब दो बातें हो सकती हैं, या तो ये कहेगा नहीं नहीं जनाब बस मैं इनको रुखसत यहां मैं जा रहा हूं, या दूसरे कहेगा अच्छा ठीक है आ गए। अब वो बेचारे को परेशानी होगी कि नहीं होगी, इसलिए मना फरमाया कि ऐसा ना करो। सुभान अल्लाह। हां अगर ऐसा हो तो जिसको दावत हो वो पहले ही पूछ ले कि मेरे साथ एक होगा दोस्त, क्या इजाजत है, तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उससे इजाजत, उसमें भी इजाजत उससे से ले जो बेतकल्लुफी से मना भी कर सकता हो, ये भी एक मसला है, क्योंकि इजाजत मांगना भी गोया उस पर सवार होना है, इजाजत मांगना भी गोया उस पर सवार होना है। और अगर ऐसा हो कि पेट भरना का वो ना हो, जैसे अभी हम कहीं गए थे तो उन्होंने मुझसे कहा खाना, मैंने कहा ठीक है, मैंने पूछा कितने आदमी, रमजान शरीफ से पहले कहने चार पांच आदमी का, तो मैंने उनसे कहा देखो आप अपनी तरफ से खाना कर लें, जितने आदमी होंगे मैं ले आऊंगा और मैं जिसको चाहूंगा बिठा लूंगा। कहने लगा अच्छा ठीक है, तो उनसे बेतकल्लुफी थी, तो उसके बाद ये हुआ, हमने कहा जाओ भाई लाओ लाओ बैठो बैठो, और फिर जाने वालों को समझा दे खबरदार गड़बड़बाजी नहीं करना, जितना मिले पेट भर के चुप करके खा लेना, चाहे पेट भरे या ना भरे, जितना खाना होगा उसी को हजम कर लेना, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। या अल्लाह या अल्लाह। हजरत पीरो मुर्शिद हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात, असली अमीर कौन है? सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह के तालिब हैं वो ये न सोचें कि हम गरीब हैं। फरमाया मैं वल्लाह कहता हूं कि जिसके दिल में अल्लाह है उससे बढ़कर कोई अमीर नहीं है, और जिस जालिम बादशाह के पास अल्लाह नहीं है उससे बढ़कर कोई मिस्कीन और यतीम नहीं है। जिन चीजों पर उनको नाज है, जिन चीजों पर इनको नाज है, मरने के बाद मालूम होगा कि कब्र में उनके जनाजे के साथ कौन जाता है, लेकिन अल्लाह वाले अपने अल्लाह को साथ लेकर जाते हैं। इंशाअल्लाह जमीन के नीचे भी उनसे अल्लाह ताला फरमाएंगे कि जब जमीन के ऊपर तुम ताल्लुकात में घिरे हुए थे उस वक्त तुमने हमें फरामोश नहीं किया, अब जब तुम अकेले आए हो, बीवी बच्चों ने कारोबारो तिजारत ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, अब मैं तुम्हें कैसे तन्हा रखूं। वह माकुम ऐना माकुंतुम, زمین کے اوپر بھی اللہ ساتھ اور زمین کے نیچے بھی، برزخ اور میدان محشر میں بھی اور جنت میں بھی انشاءاللہ تعالی. واہ واہ. اہل اللہ کے استغنا کا سبب یعنی مستغنی مخلوق سے، ان کی لذتیں باطنی ہیں. فرمایا کہ کوئی بادشاہ کیا جانے اللہ والوں کے مزے کو، کوئی بادشاہ کیا جانے اللہ والوں کے مزے کو، واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو مزہ اللہ والوں کے قلب میں ہے پوری دنیا کا اجتماعی مزہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پوری کائنات کا مجموعہ لذات ایک ترازو میں رکھ لو، تمام کائنات کی لذتیں ایک ترازو میں، اور خدا کے عاشقوں کے ایک اللہ کا مزہ دوسری میں رکھ لو، تو اس مزے کو سلاطین کائنات سمجھ بھی نہیں سکتے کہ یہ کیا مزہ ہے. پھر فرمایا درد سے اختر اللہ والوں کا ایک ادنا غلام ہے، لیکن جنوبی افریقہ کے سفر میں وہاں کے ایک بڑے عالم نے کہا کہ میں نے بہت تقریریں سنی ہیں، لیکن جب تم بادشاہوں کو اور ان کے تخت و تاج کو للکارتے ہو تو ہمارے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ کیسا ملہ ہے کہ بجائے اس کے کہ جیب سے رسید بک نکالے یہ بادشاہوں کو للکار رہا ہے. میرے دوست یہاں موجود ہیں جو افریقہ، لندن، امریکہ، کینیڈا کے سفر میں ساتھ تھے، وہ گواہی دیں گے کہ میں نے کبھی اپنے مدرسے کا نام بھی نہیں لیا، اگرچہ میرا بھی مدرسہ ہے. اس زمانے میں 1500 بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، پورا درس بخاری شریف تک ہے، لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد پیش کرتا ہوں. اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہے؟ اور یہ میرا کمال نہیں، میرے بزرگوں کی جوتیوں کا صدقہ ہے. بڑے بڑے ماردار، بڑے 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 مالدار بیعت ہوتے ہیں، لیکن مدرسے اور طلباء کا کبھی تذکرہ بھی نہیں کرتا، کیونکہ اگر تذکرہ کیا تو فوراً ان کے دل میں خیال آئے گا کہ آمدم برسرے مطلب، یعنی اپنے مطلب پر آ گئے، اور پھر وہ مجھ سے دین سیکھیں گے. یہ فتنے کا زمانہ ہے. مخلوق سے کچھ نہ کہو، اللہ سے دعائیں مانگو، یہ اللہ کا دین ہے. غیب سے انشاءاللہ تعالی مدد آئے گی. چلو بھائی، اللہ تعالیٰ اپنا فضل، خاص فضل، اپنا کرم ہم سب پر فرما دے. تھک گئے ہیں. اللہ یا اللہ، صلی اللہ علیہ ورحمتک یا رحمت، وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.